జయ నిత్యానంద,
జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద,
జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద,
జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద,
జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద,
జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద,
జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద.
ఓం జ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురుమీలితమేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదం తికం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీ రూపాం సాగర జాతం సహగన రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగన లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియ. వాచాకల్పత రూపేశ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసుది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కల్ హమ్ క్యా డిస్కస్ కర్ రహే థే, कल हम सुन रहे थे कि जो स्थायी भाव है उन स्थायी भाव में ये जो चार चीजें मिलती हैं, विभाव अनुभाव सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव जिसको संचारी भाव भी कहते हैं, तो ये मिलने से किस प्रकार से रस उत्पन्न होता है. और क्योंकि जो स्थायी भाव है उन स्थायी भाव में ही भगवान के प्रति ये जो रति अलग अलग इसमें उत्पन्न हो जाती है साधक के हृदय में. तो उन रति के बारे में हमने कल चर्चा की थी, शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति. तो ये जो पांच प्रकार की रति हैं, और कृष्णदास कविराज को कृष्णदास कविराज लिखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं, कहते हैं कि भक्त भेदे रति भेद, असंख्य भक्त हैं तो उसी प्रकार से भक्त रति में भी या अटैचमेंट में भी भेद है. लेकिन उन्होंने उन भेदों को जो मुख्य रूप से कैटेगराइज किया है, ये पंच विभेद या पंच प्रकार, शांत रति, दास्य रति, साख्य रति यार, वात्सल्य रति, माधुर्य रति, ये पंच विभेद. तो इस प्रकार से इन रतियों की हमने चर्चा की थी. और फिर जो चैतन्य महाप्रभु हैं और उनको कहते हैं शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्ये ए पंच प्रधान. तो हमने ये भी सुना था कि ये जो रति है ये कब रस में परिणत हो जाती है, रस कब बनती है, या जिसे रस कब कहा जाता है, शांत रस हम कहते हैं ना, ये भक्त शांत रस में है. तो उससे पहले हमने सुना कि वो अटैचमेंट होती है और फिर उसके बाद वो जो रति है वो रस में परिणत हो जाती है. तो कैसे परिणत होती है, और फिर जो भक्त हैं भक्तिक रस का तब वास्तव में आस्वादन करने लगता है. हाँ तो ये बहुत उन्नत धरातल है, हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता रहे हैं। और अभी ये शिक्षा शायद और एक क्लास में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये शांति शांत रति शांत रस में कब ये होती है, परिणत होती है, कन्वर्ट होती है। तो जो शांत रस वाला भक्त है, हाँ, वो विशेष रूप से परमात्मा या परम ब्रह्म है, उनमें प्रेम रखता है। ये शांत रस भक्त का जो एक लक्षण है। और इसमें ये जो चार चीजें हैं, एक तो क्या है, एक विभाव और एक है अनुभव और एक है सात्विक भाव और एक है, हाँ, तो उनमें से ये जो विभाव जब इस शांति रति में मिक्स होता है तो विभाव के दो भाग हैं। कौन से दो भाग थे?
आलंबन
आलंबन और उद्दीपन। तो जो आलंबन है, हाँ, उसमें दो भाग हैं, एक है विषय आलंबन और दूसरा है
आश्रय
आलंबन। तो शांत रस का भक्त, हाँ, उसका विषय आलंबन कौन है? चतुर्भुज फॉर्म, भगवान के चतुर्भुज फॉर्म के प्रति आकर्षित होता है। विषय आलंबन का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ लव, हाँ, या प्रेम के विषय। अभी अलग अलग भक्त अलग अलग भगवत रूप या अवतार के प्रति आकर्षित है कि नहीं। तो जो शांत रस के भक्त होते हैं वो परमात्मा फॉर्म से प्रेम होता रहे, उनका ये रहता है, वो क्यों? क्योंकि सेवा करने की भावना नहीं होती उनमें, सेवा नहीं ये करते, हाँ, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट कोई संबंध ही नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, हाँ, जैसे ये सनक आदि मुनि हो गए, शुकदेव गोस्वामी जब जन्म लिए तब, हाँ, भागवत सुनाया सुना सुनाया तब नहीं, तब वो किसी और रस में थे। तो ये जो चतुर्भुज रूप में भगवान के प्रति प्रेम या उनके विषय आलंबन है, हाँ, या प्रेम के विषय है चतुर्भुज रूप। और ये जो, हाँ, इसके आश्रय आलंबन कौन है? आपको समझ में आ रहा है ना? अभी हम विभाव की चर्चा कर रहे हैं। विभाव में दो कैटेगरी है, एक है आलंबन और उद्दीपन। तो अभी विभाव में हम आलंबन की बात कर रहे हैं। आलंबन में क्या है कि शांत रस के भक्तों को ऑब्जेक्ट कौन होता है प्रेम का? चतुर्भुज रूप। तो कौन है वो शांत भक्त के शांत जो भक्त है, हाँ, तो कहते हैं कि आत्माराम मुनिगण जो है, आत्मारामस्य मुनयो, जो उनको कोई ऐसी भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि शांत रस का मतलब ही है दो चीजें उनमें प्रमुख होती है। कौन सी रति? जो हमने कल डिस्कस किया था, एक तो है तृष्णा, कोई और तृष्णा नहीं, भोग की उनके हृदय में लव मात्र भी इच्छा नहीं रहती, और निष्ठा होता है, फर्म फेथ के साथ वो भगवत इसमें बने रहते हैं। तो वो कौन है? सारे तपस्वी गण है या फिर आत्माराम मुनिगण है, हाँ, और उनका उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है कि वो निर्जन वास करते हैं तो उनको और परमात्मा फॉर्म या चतुर्भुज रूप के प्रति उनका निष्ठा और स्ट्रांग होता है। या जो वो भक्त है जो उपनिषद आदि का श्रवण करते हैं, तो ये जो चीजें हैं, हाँ, उनमें और अटैचमेंट पैदा करती है। उद्दीपन का मतलब क्या है? और जो चीजें अटैचमेंट बढ़ाती है उसको क्या कहा गया है? उद्दीपन कहा गया है। हाँ, तो ये चीजें आपको पिछली चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी तो फिर समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे जो शांत रति वाले भक्त हैं उनमें विभाव मिक्स हो रहा है और फिर क्या है? अनुभव। अनुभव का कुछ वर्णन ही नहीं है इनके लिए। और लेकिन सात्विक भाव, सात्विक भाव, जो सात्विक भाव का मतलब ये जो हम सुनते हैं अष्ट सात्विक विकार, तो बहुत रेयरली इनमें देखने को मिलते हैं या होते, कुछ कुछ अष्ट सात्विक विकार ये शांत रस के भक्तों में प्रधान हो जाते हैं। तो फिर है दास्य रति, जो रस में कब परिवर्तित होती है। तो दास्य रति के भक्त वो है,
इनसिग्निफिकेंट
अट्रैक्शन भगवान के रूप के प्रति आसक्ति और सेवा का प्राधान्य, सेवा की भावना। दास्य के जो भक्त हैं, जो जिनमें जो दास्य रति के भक्त हैं उनमें विभाव जब बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का संचार हो जाता है, तो वो जो दास्य रति है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? दास्य रस में। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि दास्य रस में वो जो चीज है वो कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसे जो दास्य रति, दास्य रस के भक्त हैं, वो कई जगहों में पाए जाते हैं। हाँ, एक तो है ये द्विभुज फॉर्म जो भगवान का है उसके प्रति आकर्षित होते हैं, और भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, या द्वारका में भी भगवान का जो द्विभुज रूप है उनके प्रति भी ये जो दास्य रस के भक्त हैं आकर्षित होते हैं। और मतलब इनको कहा गया है कि विषय आलंबन, इनके ऑब्जेक्ट कौन है लव के, प्रेम के? टू हैंडेड फॉर्म जो भगवान का है, या फिर कई बार चतुर्भुज रूप के प्रति भी ये सेवा का भाव इनका बना रहता है। जैसे हनुमान है, भगवान राम के टू हैंडेड फॉर्म के प्रति सर्विस की भावना है। हाँ, तो ये उनके प्रेम के विषय हैं जो दास्य रस के भक्त हैं। और इनमें कौन से भक्त आते हैं इस कैटेगरी में? हजारों हजारों, ऐसे कहा गया अगणन। हाँ, तो दास्य रस में अगिनत जो भक्त हैं वो पाए जाते हैं। और इनका प्रेम दास्य रस कब इनका और अधिक बढ़ता है, दास्य रस का आस्वादन जिसको उद्दीपन कहा गया है, जब ये इस प्रकार के भक्त जब भक्तों के एसोसिएशन में आते हैं, संग में आते हैं, तो भगवान के प्रति इनका प्रेम, दास की भावना है, सेवक की जो भावना है, वो और अधिक बढ़ती है, और अधिक स्ट्रांग होने लगती है। और भगवान के चरण रज आदि को जब ये देखते हैं वृंदावन आदि में, या भगवान की जो भगवान ने धारण किए हुए वस्त्र है, माला है, या प्रसाद आदि है, हाँ, तो ये जब चीजें देखते हैं तो उनमें भगवत प्रेम या दास्य रस बहुत अधिक मात्रा में वृद्धिंगत होता है या बढ़ने लगता है। हाँ, तो ऐसे जो दास्य रति के भक्त हैं, जो दास्य रस में परिणत हो जाते हैं, और इनमें अनुभव क्या है? अनुभव का मतलब क्या है? हमने अनुभव का मतलब क्या सुना था? हाँ, कि अनुभव का मतलब ही है कि जो चित्त में जो चीजें हैं वो बॉडी में दिखाई देती है उस भक्त के। तो दास्य रस के जो भक्त हैं उनमें अनुभव क्या है कि वो फिक्स होते हैं आज्ञा पालन करने में। हाँ, बाहरी रूप से प्रकट होता है उनके आचरण से, वो भगवत आज्ञा या भक्तों की आज्ञा पालन करने में क्या होते हैं, वो दृढ़ होते हैं। तो ये दास्य भाव, दास्य रस का वो आस्वादन कर रहे हैं इस प्रकार से, और भक्तों से उनकी मित्रता प्रकट होती है। हाँ, इसमें भक्तों के सर्कल में क्या है, वो भक्तों से मित्रता, ये बाहरी लक्षण दिखाई दे रहा है। अनुभव का मतलब क्या है कि जो हृदय में है, चित्त में जो भावना है, वो उस भक्त के आचरण में या शारीरिक चीजों में प्रकट होती है या दिखाई देती है। तो उसमें ये एक चीज है, क्या? भक्तों से मित्रता बढ़ती है, आज्ञा का पालन करने में वो बहुत कठोर होते हैं, और भगवान के प्रति बहुत स्ट्रांग निष्ठा होती है, और नृत्य गीत भगवत पूजा करने में वो बिल्कुल फर्म होते हैं, लगे रहते हैं। तो ये इनका अनुभव है। और इनमें सात्विक भाव कौन से आ जाते हैं? सात्विक भाव, क्योंकि अभी देखेंगे जो हमने पीछे वो चार चीजें डिस्कस की है ना, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड हो रही है। हर एक रस में क्या हो रही है? थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड हो रही है, इसलिए उस प्रकार का मूड, उस प्रकार की भावना उस रस में भक्त के हृदय में बन रही है। तो जैसे वो चार चीजें हैं, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और संचारी भाव, ये याद रखना होगा। इसमें से जो हमने अलग अलग चीजें देखी थी कि व्याभिचारी भाव में 13 या 33 चीजें हैं, या फिर सात्विक 8 प्रकार की चीजें हैं सात्विक भाव में, तो इनमें से हर एक रस में 2 3 तीन चार ऐड होती है उसी के अनुसार उस भक्त का मूड या भाव रति रस में परिणत हो जाती है। तो सात्विक भाव कौन से आते हैं इस भक्त में? स्तंभ, स्तंभित हो जाना, मतलब जड़ हो गया है भक्त ऐसे। कल हमने वो डिस्कस किया था, स्तंभ आदि थोड़े ही भाव ये हो जाते हैं। और इनमें व्याभिचारी भाव, ये जो चार व्याभिचारी भाव हैं, ये प्रकट नहीं होते, बाकी सारे प्रकट हो जाते। कौन से प्रकट नहीं होते? भ्रम, हाँ ये भ्रम, भ्रमित नहीं होते, या मद मतलब गर्वित नहीं होते, या त्रास, या निद्रा, ईर्षा, ये सब भाव को छोड़कर बाकी जो व्याभिचारी भाव हैं वो इस भक्त में प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो दास रति है, दास के भावना का जो अटैचमेंट भगवान के प्रति है, वो ये चार चीजें ऐड होने से दास रस में परिणत होता है या कन्वर्ट हो जाता है, और तब भक्ति रस का आस्वादन करता है। हाँ, ये बहुत ऊंचा धरातल है। तब हम सोच सकते हैं कि भक्ति रस कोई व्यक्ति आस्वादन कर रहा है। और आगे क्या है? सख्य, सख्य रति, या फिर वो सख्य रति अभी कैसे साख्य रस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो ये स्थाई भाव है सख्य रति के साथ, ये जो चार चीजें मिलती है, पुनः वही चार चीजें, कौन सी चार चीजें? विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्याभिचारी भाव, ये चीजें नहीं भूलनी है। ये जब मिलती है तो उस सख्य रस सख्य रति में जो भक्त है उसके हृदय में एक प्रेम का बाढ़ आने लगती है, और उस रस से उसका हृदय पुष्ट हो जाता है। तब वो भक्त साख्य रस का आस्वादन करने लगता है, साख्य रति से वो रस में का आस्वादन करने लगता है। तो इसके विभाव क्या है? इसका ऑब्जेक्ट ऑफ लव कौन है सख्य रस में? कौन हो सकते हैं? कृष्ण है। इसके कौन है? कृष्ण है, द्विभुज जो भगवान है, या कई बार चतुर्भुज फॉर्म के प्रति बहुत रेयरली ये जो पाया जाता है। और इसके आश्रय कौन है? कौन से भक्त सख्य रस में होते हैं? ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी होगी, एक है विषय आलंबन, दूसरा है आश्रय आलंबन। विषय मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ लव, और आश्रय मीन्स कौन उससे प्रेम करता है, ये दो चीजें। तो मतलब जो भक्ति लता बड़ी है वो भगवान जो ऑब्जेक्ट है उनके चरणों में उधर पकड़ा है भक्ति लता ने, और वो भक्ति लता कहां से निकली है? भक्त के हृदय से। तो वो भक्त कौन है जिसको आश्रय कहा गया है? तो वो भक्त कौन है भगवान के? उनके जो मित्र गण आदि हैं, ग्वाल वगैरह हैं, अर्जुन सखागण वगैरह हैं, तो ये सख्य रस में आ जाते हैं। उनके समवयस्क, एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, उनके बराबर आयु वाले जो भक्त हैं ये उसमें आते हैं। तो उनका सख्य रस या सख्य प्रीति कौन से चीजों से बढ़ती है? सख्य रस कैसे बढ़ता है? जब वो अपने ही समान वयस्क भक्तों को देखते हैं तो भगवान के प्रति ये रस उनका उद्रिंगत होता है, या भगवान का वो श्रृंग देखते हैं, या वेणु देखते हैं, या शंख आदि देखते हैं, तो या हंसी मजाक जब करते हैं तो ये चीजें, या भगवान के प्रिय जनों को वो देखते हैं, तो ये सख्य रस उनके हृदय में और अधिक बढ़ने लगता है, या सख्य रस का आस्वादन करते हैं। तो इसमें अनुभव है कि अनुभव क्या है कि वो बाहरी रूप से प्रकट होता है। अनुभव का मतलब बाहरी रूप से क्या, कि वो बाहु युद्ध करते हैं, या अलग अलग भगवान से हंसी मजाक करते हैं, जैसे कई वैष्णवाज है वो अपने ड्यूटीज से भी सख्य रस का वो करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये क्या है, बाहरी रूप से प्रकट हो जाता है। ये जो भाव है वो रोकना नहीं चाहते, ऐसे नहीं कि आज से हम शुरू कर दे, ये नहीं, नकल नहीं करनी है और इमिटेशन इमिटेट नहीं करना है। ये कब होगा? जब साधना हमने शुरुआत में ही सुना ये चीज क्या है, वो तो पूरा यह है किसी पेड़ का ऊंचा सबसे ऊंचा भाग है। हाँ, लेकिन हम कहाँ से शुरू कर रहे थे, हम साधना से, साधना भक्ति। तो ये सात्विक भाव इस रस में आते हैं, सारे सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं सख्य रस में। और संचारी भाव कौन कौन से हैं, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि उग्रता, त्रास, आलस्य के अलावा सारे भाव इनमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं इस रस में, भगवान भी और अधिक आनंद लेते हैं और उनके जो सख्य रस के भक्त हैं वो भी बहुत आनंद लेते हैं। इवन अर्जुन के साथ ही सख्य रस का संबंध नहीं था, भगवान का सख्य रस का संबंध किसके साथ था, भीम के साथ भी था। वर्णन आता है भक्ति रसामृत सिंधु में कि जब भीम के साथ भी भगवान बहुत मजाक कर रहे थे, तो जब एक बार भीम आए द्वारका आए, तो द्वारका आए तो भगवान ने सोचा कि भीम आया है, तुरंत प्रसाद लेने के लिए बैठ गए। और सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि उनको अंदर मत आने देना, मैं प्रसाद ले रहा हूँ। और जैसे प्रसाद लेना शुरू किया तो जानबूझ के जो भगवान है, भगवान ने उनको रोक के रखा, और गार्ड को, वो गार्ड ने या जो सोल्जर है उन्होंने रोका, तो कहते क्या कर रहे हो अंदर, कहते भोजन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी अंदर किसी को मत आने देना, तो कहते मुझे भी तो भूख लगी है, वो अकेला क्यों बैठ के खा रहा है। तो फिर अंदर से कृष्ण क्या कर रहे थे, जोर जोर से आवाजें कर रहे थे, वो कितना स्वादिष्ट है या फिर पापड़ चबा रहे जिसका आवाज कर रहे हैं, या फिर स्वीट पी रहे हैं, तो इधर क्या हो रहा था। और भाषा मतलब ये कर रहे हो कितना अच्छा है, कितना ये है। तो यहाँ जो भीम है वो बिल्कुल ये हो गया था, क्या कह सकते हैं, पानी पानी हो गया। तो इस प्रकार से भगवान इस रस का आस्वादन करते हैं और उनके भक्त भी। तो फिर ये कहते हैं, भीम जोर से चिल्लाते, अरे तुम तो बचपन से जीप चटोरे हो, अभी तो मुझे इतना भूख लगा है, मुझे क्यों नहीं अपने साथ बिठाते हो। तो ये सख्य रस है कि भगवान के साथ क्या करते हैं भक्त इस रस का, क्योंकि आपने एक जैसा ही उनको मानते हैं मित्र, मित्र के रूप में। तो ये सख्य रस है जो भगवान आस्वादन करते हैं और उनके भक्त भी। तो आगे है वात्सल्य। तो जब ये चारों के साथ जब जो वात्सल्य रति का मिलन होता है, तो वात्सल्य रत, वात्सल्य जो रस है वो प्रकट होता है। हाँ, तो वात्सल्य रस के जो विषय आलंबन है वो है कृष्ण, कृष्ण है। और उनके आश्रय आलंबन कौन है, कौन से भक्त, नंद महाराज, उनके माता पिता आदि वात्सल्य रस के, उनके गुरु वगैरह इत्यादि है। तो इस प्रकार से उनके लिए उद्दीपन क्या है, कौन सी चीज भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ाती है, तो वो है कि भगवान का कुमार अवस्था, जो छोटे से बालक, या फिर बचपन में भगवान इधर उधर दौड़ रहे हैं, इसको शैशव चापल्य कहा गया है, मतलब शिशु अवस्था में छोटे छोटे नटखट चीजें करना, ये जो इस वात्सल्य रस में जो भक्त है उसके हृदय में भगवत प्रेम को और अधिक बढ़ाता है ये चीज को देखकर। और भगवान का जो मंद हंसी है, या भगवान जो अपने छोटे आयु में जो शब्द निकालते हैं, जैसे आजकल भी बच्चा जब बोलता है तो माता पिता को चाहे वो कैसा भी तोतली बोली बोले तो आनंद आता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौन ऐसा है जो अपने बच्चों का तोतली बोले सुनकर आनंद अनुभव नहीं करता, तो उन्होंने वह ग्रह मेदी का वर्णन किया है जिसमें कहा है कि यही तो एक सुख है गृहस्थ लाइफ में, ग्रह मेदी का, कि चुन्नु मुन्नी की आवाज जो तोतली आवाज सुनना कानों को वो मधुर लगती है, बहुत मधुर, इसलिए उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आगे आता है कृष्ण एक रुक्मिणी के साथ जब संवाद करते हैं तो बताते हैं कि क्या सुख क्या है। तो इस प्रकार से भगवान का ये जो हंसी है, उनका जो शैशव चापल्य आदि है, ये जब वात्सल्य रस के भक्त देखते हैं तो भगवत प्रेम या ये जो वात्सल्य रस है वो और अधिक बढ़ता है। और इनमें अनुभव क्या है कि अनुभव है कि भगवान के शरीर का अंग मार्जन करते हैं, बाहरी रूप से प्रकट होता है ये चीजें, या भगवान के मस्तक को सूंघ लेते हैं, या भगवान को आशीर्वाद देते हैं कि महान बन जाओ, या फिर कल हम चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो अनुभव इस रस में ये मिलते हैं, या उनके हितोपदेश देते हैं भगवान को, उनके हित की चर्चा करते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि चोरी आदि करो, लोग तुम्हें चोर कहेंगे, आगे तुम्हारा कैरियर ये हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, कुछ पढ़ो लिखो। तो इस प्रकार से ये जो अनुभव है वो प्रकट होते हैं। और एक विशेषता क्या है कि आठों सात्विक अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उसमें से एक और कहा गया है, आचार्यगण कहते हैं कि एक नवा भी केवल वात्सल्य रस के भक्तों में प्रकट होता है, और वो जो भगवान की माता आदि है, वो क्या है कि उनके स्तन भगवान से जब प्रेम बढ़ता है तो उनके स्तनों से दूध अपने आप निकलने लगता है। तो ये एक अष्ट सात्विक विकार का एक लक्षण है। तो इतना अधिक प्रीति कृष्ण के लिए होता है, लड्डू गोपाल के लिए होता है। ये गोपाल जी किन के ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव कौन है इनके वात्सल्य प्रेम के, लड्डू गोपाल, विषय आलम्बन जिसको कहा गया है। तो आगे है माधुर्य रस। तो माधुर्य रस, ये जो माधुर रति जब इन चारों में मिल जाती है तो फिर क्या बनता है, माधुर्य रस। जैसे हमने पिछली बार रूप गोस्वामी ने उदाहरण दिया था कि दही में चार चीजें मिल जाती है तो वो कैसे अमृत के जैसे बनती है। क्या क्या चीजें थी वो चार,
कर्पूर
था,
सीता,
स्वीट घी था और ब्लैक पेपर था। ये चार चीजें मिलेगी दही में तो क्या हो जाएगा, नेक्टर का टेस्ट आएगा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो महाप्रभु उसी प्रकार कहते हैं कि ये जो अलग अलग रति में ये जब चार चीजें मिलती है, विभाव, अनुभव, सात्विक भाव और व्याभिचारी भाव, तो क्या होगा, रस बनेगा। और तब भक्त क्या करता है, भक्ति रस को तब आस्वादन करता है, तब वो अनुभव करता है भक्ति रस का। तो उसी प्रकार से ये जो उचित रूप से विभाव आदि जो भाव मिलते हैं तो ये जो मधुर रति है वो मधुर रस का रूप धारण करती है। इसलिए इसके विषय आलंबन कौन है, कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण, कौन से
श्याम
सुंदर कृष्ण, और उनका कौन से कृष्ण की जिनका असमोर्ध्व सौंदर्य, मतलब जिसका कोई उसके परे कोई सुंदरता नहीं है, ये है किनका ऑब्जेक्ट है, ये जो समस्त प्रेयसी वर्ग है भगवान का, लक्ष्मी आदि है, गोपियां हैं, द्वारका की महिषा है, रानियां हैं, और भगवान श्याम सुंदर उनके प्रेम के विषय हैं, और प्रेम करने वाले या आश्रय आलम्बन ये सब हैं, गोपियां, उनकी रानियां, भगवान का प्रेयसी वर्ग, और इनका उद्दीपन ये मधुर रस। और कैसे वो बढ़ता कैसे है या आस्वादन कैसे होता है, जब वो नवजल धर को देखते हैं। नवजल धर का मतलब है कि जो बादल नया जल को धारण करता है तो उसका श्याम वर्ण हो जाता है बादल का, तो उसको देखने मात्र से गोपियों के हृदय में श्याम के प्रति क्या होता है, रस बढ़ने लगता है, उस रस का आस्वादन करते हैं। या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मयूर पुच्छ, इसलिए कृष्ण का एक नाम है शिकी पिच्छ धारी, शिकी मीन्स मोर का पुच्छ जो धारण करने वाले हैं उनको कृष्ण कहा गया है। तो जब मयूर पंख को भी देखती है उनकी गोपियां आदि, तो उनका ये मधुर रस और अधिक बढ़ने लगता है। या फिर मुरली ध्वनि वगैरह सुनती है, तो इनमें संचारी भाव क्या है, ये दो भाव छोड़कर बाकी सारे भाव प्रकट होते हैं, एक है उग्रता और एक है आलस्य, ये दोनों को छोड़कर बाकी जो सारे व्यभिचारी भाव है वो प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं चीजों का वर्णन अभी आगे आएगा कि हर 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 एक रस में क्या क्या चीजें बढ़ रही है। जैसे हमने शांत रस में कहा दो चीजें हैं, फिर दाश्य रस में कितनी हो जाती है, एक थी, फिर दो होती है, फिर तीन हो जाती है, फिर चार होती है, और फिर पांच, ऐसे सारे चीजों का वर्णन अभी चैतन्य महाप्रभु सिक्वेंसली करेंगे। उसी में से कई चीजें मैंने पहले ही आपको बता दी है। सात्विक भाव सारे आते हैं। शांतदास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य रसनाम कृष्ण भक्ति रस मध्ये ये पंच प्रधान। तो ये पांच प्रधान रस है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्ति में। लेकिन इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु कहते और भी हैं। और कितने रस है? सात रस है। हर्ष अद्भुत तथा वीर करुणो रुद्र इति अपि भक्त्यान का सभी वत्स इति गणोच सप्तधा। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि और जो सात रस है उनको क्या कहा गया है? गौण रस। और पहले जो पांच रस थे उनको क्या कहा गया है? मुख्य रस। तो सात कौन से है? हर्ष अद्भुत वीर करुण रौद्र विभत्स भय पंचविद भक्ति गौण सप्त रस है। एक है हर्ष रस, एक है अद्भुत रस, एक है वीर रस, एक है करुण रस, एक है रौद्र रस, एक है विभत्स रस और एक है भय, भय रस। तो ये सात रस भी कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। जैसे भीष्म देव थे कौन से रस में? वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। तो ये इनडायरेक्ट मेलोज हैं जो ये सात हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कह रहे हैं पंचरस तस्ताई व्यापी रहे भक्त मने सप्त गौण आगंतुक पाई कारणे। तो ये पांच रस है स्थाई रूप में भक्त के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन ये जो सात है ये क्या क्या है? आगंतुक है। आगंतुक का मतलब क्या है? एक्सीडेंटली आ जाते हैं, कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। या हमने आगंतुक आ गए, कोई तो बीच में आ गए, अचानक आ गए, इसको भी आगंतुक कहते हैं। दो लोग बात कर रहे फिर तीसरा आ गया। तो उसी प्रकार से ये पांच रस तो हृदय में रहते हैं लेकिन ये बाकी रस कभी कभी प्रकट हो जाते हैं या एक्सीडेंटली पहुंच जाते हैं भक्त के हृदय में। शांत भक्त नव योगेंद्र सनक आदि यार दास भाव भक्त सर्वत्र सेवक अपार। तभी उदाहरण देना शुरू कर रहे लॉर्ड चैतन्य। हमने पहले इसके कुछ उदाहरण सुन लिए। तो दास भक्त शांत भक्त कौन है? नव योगेंद्र जो 11th कैंटो आदि में आता है और सनक आदि यार कौन कौन है उनके पुत्र? ब्रह्मा के सनक, सनातन, सनंदन और सनातन। तो एक भक्त कह रहा था ये सन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र है, सन ऑफ ब्रह्मा, इसलिए सन लगा हुआ है सबके आगे। सनक है, सन है ना, सनातन है, सनंदन है, सना सनत कुमार है। तो इस प्रकार से दास्य भाव के भक्त सर्वत्र सेवक अपार। तो दास्य भाव के जो भक्त है वो अनलिमिटेड है। जितने भी सेवक है वो भगवान के क्या है? दास्य भाव के जो भक्त है। सक्य भक्त श्री दामादि पूरे भीमार्जुन वात्सल्य भक्त माता पिता जत गुरुजन। सख्य भक्त कौन है? श्री दामादि है। श्री दाम, सुबल, मधुमंगल ये सब है। छल्ले बल्ले लड्डू खाए श्री मधुमंगल। तो लड्डू खाने वाले मधुमंगल है। तो श्री दामादि और पूरे, पूरे मीन्स कौन? हस्तिनापुर या द्वारका आदि में कौन है उनके जो ये सख्य में है? भीमार्जुन आदि है। मधुर रसे भक्त मुख्य ब्रजे गोपी गान महिषी गण लक्ष्मी गण असंख्य गणान। तो मधुर रस के भक्त कौन है? ब्रजे गोपीगण, वृंदावन की जो ललनाए हैं, वधु हैं, और महिषी गण जो रानिया हैं, लक्ष्मी गण, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी सहस्र शत सम्रमान सेव्यमानम। पुनः कृष्ण रति है द्वैत प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र केवल भेद आर। तो अभी ये जो अटैचमेंट है ये भी कितने प्रकार का है? ये जो रति ये कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक ऐश्वर्य और एक क्या है? केवला, संभ्रम, एव एंड रेवरेंस जिसको कहते हैं ना, और दूसरा क्या है, केवला मतलब मिश्र नहीं है, एक ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र, ये क्या है, रति है लेकिन उनको भगवत्ता का ज्ञान रहता है कि अरे ये भगवान है, इसको क्या कहते हैं ऐश्वर्य, इसको ऐश्वर्य ज्ञान कहा गया है। और दूसरा क्या है, केवला रति, केवल शुद्ध रति, शुद्ध अटैचमेंट, कि उस ऐश्वर्य को देखने मात्र से भी वो ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करती है, कर्ता जो भक्त है। तो इनको कहा गया है दो रति, दो रति के भी दो ये भेद है, एक है ऐश्वर्य से युक्त ऐश्वर्य ज्ञान का मिश्रण और दूसरा है केवला रति। केवला का ट्रांसलेशन प्रभुपाद कहते प्योर अटैचमेंट, और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र नॉलेज ऑफ कृष्णा मिक्स्ड विद ए रेवरेंशियल एटीट्यूड। गोकुले केवला रति ऐश्वर्य ज्ञान हीन, पुरी द्वये वैकुंठादे ऐश्वर्य प्रवीण। तो ये केवला प्योर अटैचमेंट कहाँ प्राप्त मिलता है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते गोकुले, गोकुले केवला रति, वृंदावन में ही ये जो केवला रति प्राप्त होती है गोकुल वृंदावन में। ऐश्वर्य ज्ञानहीन, ऐश्वर्य का जो ज्ञान है वो इनमें नहीं होता, प्योर अटैचमेंट प्योर लव भगवान के प्रति होता है। पुरी द्वये वैकुंठादे ऐश्वर्य प्रवीण, और पुरी द्वये कौन से दो पुरी है, एक है मथुरा और दूसरा है द्वारका, या वैकुंठ आदि में ये जो ऐश्वर्य ज्ञान के साथ भगवान से प्रीति होता है। ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकुचित प्रीति, देखिया ना माने ऐश्वर्य केवल रीति। अभी इनमें अंतर बताते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र जो प्रेम है उससे क्या होता है, जो भगवान के प्रति प्रीति है लव है वो संकुचित हो जाता है, उस प्रेम को दबा देता है ये जो ज्ञान है। और लेकिन केवला रति का विशेषता क्या है कि देखिए ना माने ऐश्वर्य, चाहे वो भक्त उस ऐश्वर्य को देखता है लेकिन फिर भी उसको मानता नहीं है कि ये भगवान है, ये शुद्ध प्रेम है। शांतदास्य रसे ऐश्वर्य कहाँ उद्दीपन, वात्सल्य सख्य मधुरे त करे संकोचन। अभी कहते कि दो जो शांत रस है या शांत रति है दास्य रति है, इसमें ऐश्वर्य ज्ञान जितना आता है उतना ही भगवान के प्रति अटैचमेंट क्या होता है बढ़ता है। ये दो के लिए ऐश्वर्य ज्ञान अनुकूल है, भगवत्ता का जो नॉलेज है वो क्या है अनुकूल है। शांत रस का जो भक्त है, शांत रति है, दास्य रति है, इनमें भक्त को ऐश्वर्य ज्ञान भगवान के दिव्यता के दिव्यता का जो ज्ञान है वो बढ़ता है, तो उससे उसका प्रेम भी बढ़ता है, भगवान के प्रति आसक्ति है निष्ठा है वो सब बढ़ती है। लेकिन इन तीनों में बिल्कुल उल्टा है, वात्सल्य सख्य और माधुर्य तो करे संकोचन, इन तीनों को क्या करते हैं उनके प्रेम को दबा देता है, प्रेम को कम कर देता है एक प्रकार से। हाँ तो उसका बताते हैं अभी कि कौन तीन रसों में जो सख्य वात्सल्य और माधुर्य का उदाहरण देते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान का उदाहरण वो प्रकट करते हैं। वसुदेव देव किर कृष्ण चरण वंदिल ऐश्वर्य ज्ञाने दुहार मने भय हैल। कि जब कृष्ण पहली बार वृंदावन आए थे तो इतने सालों तक लगभग 11 साल या कई साल तक वसुदेव देव की कारागृह में निवास कर रहे थे, तो लेकिन जैसे कृष्ण आए, कृष्ण बलराम मथुरा आए, तो वसुदेव देवकी ने सुना तो उनको लगा कि हमारे ही पुत्र है, लेकिन क्या ज्ञान था उनको, ये भगवान है, इसको कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञान। जैसे उन्होंने जन्म भी लिया था तो अपने बेटे को प्रार्थना कर रहे हैं, जब पहले कृष्ण बुक के सेकंड थर्ड चैप्टर में है, तो उसी प्रकार से ये जो वसुदेव देवकी जब कंस आदि को मारा तो भगवान तुरंत आए और उन्होंने इनके चरण को पकड़ा, चरण में वंदन किया, तो लेकिन ये आशीर्वाद नहीं दे रहे थे और डर भी रहे थे, अरे आशीर्वाद देंगे तो तो पाप लगेगा, ये तो साक्षात भगवान है, या फिर उनका आलिंगन नहीं कर पा रहे थे। तो इससे क्या है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसी कारण से उनका जो ये प्रीति है, वात्सल्य प्रीति है, इसको क्या किया था, संकुचित किया था या दबा दिया था। हाँ, ये जो वात्सल्य रस का उदाहरण प्रदान करते हैं, जो 10th कैंटो में आया है, कृष्णेर विश्वरूप देखी अर्जुनेर हैल भय सख्य भावे द्राष्टे क्षमा पाय करी अभिनय। तो यह वो अभी ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त सख्य की मित्रता बताते हैं कि अर्जुन ने जब भगवान का वो देखा, क्या देखा, विश्वरूप देखा, तो तुरंत भयभीत हो गए और तुरंत क्षमा याचना करने लगे। क्या कहने लगे वो, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हाँ कि मैंने तो अजानता महिमानम, मैं आपकी महिमा को जान ही नहीं पाया। हाँ, मैं आपके साथ खा रहा था, आपके साथ लेट रहा था, आपके साथ घूम रहा था, आपकी महानता को नहीं जाना। उन्होंने देखा अपने आंखों के सामने कि हजारों जो भीष्म आदि है वो सब मर रहे हैं, भगवान ने विश्व रूप में दिखाया, तो खुद डर रहे थे कि नहीं नहीं मैं भी शायद मेरा क्या होगा, खुद भयभीत हो रहे थे बहुत अधिक। तो इसलिए ये सख्य रस का ये जो ऐश्वर्य ज्ञान के कारण अर्जुन का भी जो प्रीति है भगवान के प्रति संकुचित हो जाती है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और माधुर्य रस का उदाहरण क्या प्रकट करते हैं, कृष्ण जदि रुक्मिणी कैला परिहास कृष्ण छाड़ी बेन जानी रुक्मिणी हैल त्रास। तो अभी ये जो मधुर रस है ये कैसे दबता है ऐश्वर्य ज्ञान के कारण, तो जो रुक्मिणी थी उसको ये ऐश्वर्य ज्ञान था, किसका, भगवान का। हाँ, तो वो तुरंत ये हो जाती है, जैसे भगवान ने परिहास किया था उसके साथ, परिहास का मतलब है मजाक किया था। तो एक दिन शाम का समय था जब चंद्रमा की किरणें सब जगह प्रकट हो रही थी, तो बहुत सेवा की भावना, देखा कि रुक्मिणी इतनी सारी दासी आदि होने के बावजूद भी रुक्मिणी ने चामर हाथ में लिया और कृष्ण को चामर कर रही है, तो भगवान ने देखा ये खड़ी है और सेवा में मग्न है, तो भगवान को लगा थोड़ा मजाक करता हूं। कहते हैं कि हे प्रिय, कई दिन हुआ हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें अपने हृदय की बात आपको बताना चाह रहा था, तो मुझे लगा कि मैं आज आपको सुनाऊं। कहते कि मैं वास्तव में गरीब हूं, हाँ, और मैंने अपने बाप का घर भी छोड़ दिया है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि मैं मथुरा जो मेरे पिता का घर है उसको भी त्याग के कहाँ आया हूं अभी, द्वारका, क्यों, मैं लोगों को डरता रहता हूँ, जरासंध को डर रहा हूँ, शिशुपाल आदि इन सबसे मैं भयभीत रहता हूँ, और मेरे पास तो जमीन वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए समंदर में मैंने थोड़ा सा जमीन लिया और वहां घर बनाया। तो ऐसा वो बताते जा रहे थे और वो कहने लगे इस प्रकार से मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ और मेरे पास धन आदि नहीं है, और तो आप मेरे जैसे निर्धन व्यक्ति के साथ कितने दिन गुजारा करोगी, मैं तो भीख मांगने वाला व्यक्ति हूँ और मेरे सब जगह शत्रु हैं और एक दिन मेरे शत्रु मेरी लीला खत्म करने वाले हैं, तो फिर कैसे होगा मेरे बाद आपका, तुम तो विधवा हो जाओगे, तो तुम ऐसे गलत व्यक्ति के साथ विवाह कर बैठी हो। तो ये सब चीजें भगवान उनको कह रहे हैं और मुझसे तो कोई धन दौलत वाला व्यक्ति प्रेम करता ही नहीं, सारे जो आकिंचन है जिनका जॉब नहीं है घर से निकाल दिए गए हैं भीख मांगने लगे ऐसे लोग मेरा मुझसे प्रेम रखते हैं। तो इस प्रकार से जब उनके साथ ये कर रहे थे, और मेरा भी स्वभाव ऐसा है कि मुझे भी श्रीयों से प्रेम नहीं है, हमें श्रीयों से प्रेम नहीं करता, मैं भी किन से प्रेम करता हूँ, उन्हीं भीख मांगने वाले जॉबलेस व्यक्तियों से मेरा प्रेम रहता है। तो जब ऐसी सब चीजें वो बता रहे थे भगवान उनको, तब अचानक क्या होता है कि तुम्हारा हित इसी में है, वो कहते हैं कि भविष्य के बारे में सोचो, तो इसलिए मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि मैं तो श्रीयों से प्रेम करता नहीं हूं, अच्छा है कि कोई अच्छा राजकुमार ढूंढो और आपके विवाह के लिए मैं भी कुछ स्पॉन्सर कर देता हूँ, धन देता हूँ, भगवान ने कहा। तो इतना वो कांपने लगी थर थर के, अरे साक्षात भगवान है और उनको मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो धाड़ कनी गिर पड़ी। तो भगवान चाह रहे थे कि ये कुछ मुझे ये करे, हा हा ये वो मान प्रकट करे, क्योंकि ये इनमें है नहीं। ये एक भावना किसमें है? ब्रज की गोपियों में है। हाँ वो है, ठीक है, विवाह करना है, ठीक है। राधा रानी फिर बिल्कुल आकर जाएंगे और फिर भगवान जाएंगे, उनके चरणों में गिरेंगे मान। तो भगवान को लगा ये तो मान प्रकट करेगी। देखा तो ये दांत बिल्कुल बंद होके बिल्कुल मूर्छित गिरी है, पानी वगैरह डाला, उसको उठाया और उन्होंने कहा कि मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। हाँ तो यही तो एक सुख है ग्रस्त जीवन में। भगवान कहते हैं कि वो सुख भी मेरे लाइफ में नहीं है। क्या एक ही चीज भगवान उधर कहते हैं उस चैप्टर में कि ग्रस्त जीवन में क्या सुख है, बाकी सारी चीजें तो टेंशन का वाली है, झमेला है। हाँ लेकिन एक चीज सुख क्या है कि अपने पत्नी के साथ एकांत में बैठकर कुछ मजाक पूर्ण बातें करे, जिससे बाकी सारा जो दुख है वो व्यक्ति विस्मरित होता है, स्मरण नहीं होता। भगवान कहते लेकिन मैं तो और दुर्भाग्यशाली हूँ कि ये सुख भी मेरे जीवन में नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये दक्षिणा नायिका है। तो रुक्मिणी का उदाहरण देते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र उनका जो रति है, जो प्रेम को क्या करता है, दबोच लेता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं। केवलार शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य न जाने, ऐश्वर्य देखी लिवो निज संबंध से माने। तो लेकिन केवला का क्या चीज है कि ऐश्वर्य को जानता नहीं है, क्योंकि केवला मीन्स शुद्ध प्रेम, प्योर भगवान के प्रति लव। हाँ ऐश्वर्य को नहीं जानता, और ऐश्वर्य देखता भी है तो क्या करता है, ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करता, ऐश्वर्य को मानता नहीं है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान का जो ये ऐश्वर्य है, यशोदा माता ने देखा था, कितनी बार देखा, दो बार देखा। मिट्टी खाने के समय भगवान ने अपना मुंह खोला, ब्रह्मांड को देखा। एक बार भगवान को दूध पिलाने लगी तो जमाई ली भगवान ने, तब देखा, तब उसको क्या लगा कि शायद ये कोई माया है या मैं कुछ भ्रमवश कुछ चीजें देख रही हूँ, लेकिन नहीं, ये मेरा पुत्र ही है। तो ये भावना, इसको क्या कहते हैं, शुद्ध रति। हाँ केवला रति, हाँ मतलब वो केवलार शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य न माने। तो जो शुद्ध प्रेम है उस ऐश्वर्य ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु यशोदा माता का यह उदाहरण देते हैं भागवतम के श्लोक को कोट करते हुए। और जो सखा गण है वो भी क्या है, वो भी इस भगवान के कंधे में चढ़ेंगे, उनको अपने सर में लगे या वो उनके सर में बैठ जाएंगे, या उनको मसाज करने में कृष्ण मेरे पैर दबा। तो इस प्रकार से वो भी एक शुद्ध प्रेम के कारण उन्होंने भी कई चीजें देखी, बड़े बड़े आसुरों को मारा, भगवत्ता को देखा कि ब्रह्मा शिव आदि गोविंद कुंड में उनका आरती उतार रहे हैं, इंद्र वगैरह अभिषेक कर रहे, सब बच्चों ने देखा। जब बच्चे घर में गए तो देखा आज वो चार मुख वाला कोई व्यक्ति हमारे मित्र का वो कर रहा था, क्या आरती कर रहा था। और जो एक आया था जिसके शरीर में सब जगह आंखें आंखें थी, कौन थे वो, इंद्र। तो ये सब देखा ऐश्वर्य, लेकिन नहीं ये हमारा कौन है, मित्र है। तो ऐश्वर्य ज्ञान होने के बावजूद भी क्योंकि उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि शुद्ध प्रेम इतना अधिक है। और गोपियों के साथ भी वैसे ही है, जब गोपियां जाती हैं, श्रीमती राधा रानी रास लीला को छोड़ के चली जाती हैं अकेली, तो भगवान को ढूंढने के लिए सारी गोपियां जाती है अलग अलग वृक्षों से, पूछते कि आपने उनको देखा, आपने उनको देखा। तो आगे चलकर एक गोपी जो राधा रानी चली गई थी, तो फिर कृष्ण उनके साथ जाते हैं और धीरे धीरे सब लोग एक जगह आते हैं जहां देखते हैं कि भगवान वही कृष्ण कितने हैंडेड फॉर्म में प्रकट हुए थे, 400 चतुर्भुज रूप में कुंज में बैठे हैं। गोपी कहते हैं नमो नारायणा, ये बताओ कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ है। वो कुछ भी नहीं, उनको लेना देना ही नहीं भगवान के इस ऐश्वर्य फॉर्म के प्रति, वो तो चले जाते हैं। और फिर श्रीमती राधा रानी आती है तो कृष्ण अपनी दो भुजाएं चाहे रखना चाहे तो भी नहीं रख पाते, तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु है वो कह रहे हैं कि जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो ऐश्वर्य प्रकट होने के बावजूद भी जो शुद्ध रति ब्रजवासियों में है उनका जो प्रेम है वो कम नहीं होता है, वो क्या होता है बढ़ते ही जाता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को इसकी शिक्षा दे रहे हैं और कल रूप शिक्षा का आखिरी क्लास हो सकता है जिनमें चैतन्य महाप्रभु कहेंगे कि हे रूप मैंने तो तुम्हें डिटेल में नहीं बताया अभी कहते कि करे दिग दर्शन, मैंने तो दिग मतलब ये कहते ना दिशा होता है, दिशा को दूर से हम दर्शन करवाते हैं, अरे ये रहा पूरब है कि नहीं। तो वैसे ही भगवान कहते मैंने तुम्हें ये क्या है किया है दिग दर्शन करवाया है, तुम्हें क्या करना है इसको विस्तार से लिखना है। आगे महाप्रभु कहेंगे तो ये फिर आगे चलकर रूप गोस्वामी ने वंडरफुल ग्रंथ दिया, वो इसी शिक्षा पर आधारित था, भक्ति रसामृत सिंधु और एक था उज्ज्वल नीलमणि, ये दो ग्रंथ ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से भरे पड़े हैं जो रूप गोस्वामी को इधर प्रयाग में महाप्रभु ने प्रदान किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रील रूप गोस्वामी पाद की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निदाय गौर प्रेमानंदे।